तारीख 20 मई दिन बुधवार, कार्यक्रम नमस्कार भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों के वर्चस्व की लड़ाई पहुंची राष्ट्रपति के पास।
मैं तो चाहूंगा कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो अपनी जिम्मेवारी को समझे। लोगों को शासन चाहिए, विवाद नहीं चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की विदेश यात्राएं संपन्न हुई, क्या हासिल हुआ करेंगे विश्लेषण। मिलिए उन लड़कियों से जिन्होंने फेसबुक पर अश्लील टिप्पणियों का दिया था कड़ा जवाब।
अगर आपको भरोसा है कि ये इंसान, इस इंसान की प्रोफाइल असली है, ये इसके ऊपर केस किया जा सकता है, बाय ऑल मींस आप आगे जाइए, आप उनको जवाब दीजिए।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। दिल्ली में कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद ने नौकरशाहों की नियुक्तियों पर नई बहस छेड़ दी है। इसी विवाद के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अल्जीरिया का कहना है कि राजधानी अल्जीयर्स के पूर्व में एक प्रमुख कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने कम से कम 22 इस्लामिक चरमपंथियों को मार गिराया है। अधिकारियों के मुताबिक 2 अन्य लड़ाकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर और देसी बम बरामद किए गए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये चरमपंथी राजधानी अल्जीयर्स पर हमले की योजना बना रहे थे। हाल के सालों में चरमपंथियों पर ये अल्जीरिया का सबसे बड़ा हमला है। चरमपंथी गुट अलकायदा इस देश पर छिटपुट हमले करता रहा है। कोलंबिया के उत्तर पश्चिमी शहर सेलगार में हुए विशाल भूस्खलन में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। अब यहां राहत कर्मियों के साथ आपातकालीन कार्यकर्ता भी भेजे गए हैं। सेलगार के निवासी और राहत कर्मी मलबे में दबे शवों को निकालने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की मदद भी ले रहे हैं। जिनके घर तबाह हो गए हैं उन्हें कॉफी बागानों में शरण दी गई है। आने वाले दिनों में यहां बारिश होने के आसार हैं, जिससे राहत और बचाव कार्य और भी मुश्किल हो जाने की आशंका है। कोलंबिया के राष्ट्रपति हुआन मैनुअल सांतोस ने वादा किया है कि वे इस विपदा के शिकार लोगों की हर संभव सहायता करेंगे।
Yo les prometí a todos los que perdieron su vivienda que les íbamos a dar.
जिनके घर इस हादसे में बर्बाद हो गए हैं, मैंने उन सबसे वादा किया कि हम उन्हें घर मुफ्त देंगे, जैसा कि हम चिंग की कीरा के उन 350 परिवारों को दे रहे हैं जिनका सब कुछ बह गया। मैंने उनसे वादा किया है कि हम इन सभी परिवारों को निशुल्क घर देंगे। ये थे हुआन मैनुअल सांतोस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नोरकाय को ब्रिटेन के साल 2015 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। निर्णायक दल ने 61 वर्षीय क्रास्नोरकाय की अद्भुत गहनता लिए एक स्वप्नदर्शी लेखक के तौर पर प्रशंसा की। उनके मुताबिक क्रास्नोरकाय एक ऐसे लेखक हैं जो मौजूदा अस्तित्व को उन दृश्यों में व्यक्त करते हैं जो अजीब हैं, खौफनाक हैं और बहुत खूबसूरत भी। क्रास्नोरकाय को उनके उपन्यास सैटन टांगो के लिए जाना जाता है, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई। इराक के रमादी शहर में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हजारों नागरिक रमादी शहर से भाग रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। दिल्ली में इन दिनों एक अलग तरह की जंग चल रही है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई में हर रोज नई नई बातें उभर रही हैं। अधिकारी उलझन में हैं। अब तक दोनों पक्षों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। आखिर बड़ा कौन है, मैं, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल? कल केजरीवाल और नजीब जंग की इस लड़ाई में क्या कुछ हुआ, पूरा हाल सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
पहले से तय समय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उनसे मुलाकात कर अपनी बात कही। राष्ट्रपति भवन से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने अंदर हुई बातचीत का ब्यौरा दिया।
अगर सेक्रेटरीज भी एलडी साहब तय करेंगे, ऑफिसर्स को सीधे इंस्ट्रक्शंस एलडी साहब देंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें उनको कहिए कि इस तरह से ना करें। उन्होंने बहुत केयरफुली सुना इस बात को और उनकी बातों से लगा कि वो कंसर्न है काफी इन चीजों को लेके।
इससे पहले मंगलवार को ही दोपहर में दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से दिल्ली सरकार के साथ चल रही तनातनी के बारे में बात की। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल की खींचतान में हर रोज एक नई कड़ी जुड़ रही है। मंगलवार को केजरीवाल ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे दिया कि वो उपराज्यपाल की तरफ से आने वाले किसी आदेश को तब तक न माने जब तक कि उसे संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री की मंजूरी न मिल गई हो। आशंका थी कि दिल्ली सरकार राष्ट्रपति से बातचीत में केंद्र सरकार के रवैये की भी शिकायत करेगी, लेकिन मनीष सिसोदिया के दिए ब्यौरे से नहीं लगता कि इस बारे में कोई बात कही गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली के लिए एक महंगा प्रयोग बताया है।
मैं तो चाहूंगा कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो अपनी जिम्मेवारी को समझे। लोगों को शासन चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, और इसलिए जिम्मेवारी को समझकर उस जिम्मेवारी को निभाए।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच असहमतियों का होना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, और न ही राज्यपाल से टकराव होना। हालांकि इसके बाद भी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से जो हो रहा है उस पर नौकरशाहों से लेकर आम लोगों तक में हैरानी है। कानूनी विशेषज्ञों की राय भी इस मामले में बटी हुई है। कुछ इसे दिल्ली सरकार का अति उत्साह बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि उपराज्यपाल गैर जरूरी रूप से दखल दे रहे हैं। अब जब बात राष्ट्रपति तक पहुंच गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही मामला सुलझ जाएगा। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस बारे में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखने वाले हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC दिल्ली।
तो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो खींचतान चल रही है उसे लेकर अधिकारियों पर क्या गुजर रही है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्र से बात की और पूछा गलती किसकी है।
अभी तक जो हम लोगों ने 23 साल से देखा है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स कई चीजों में फाइनल है और वो मानने को तैयार नहीं है चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनका कहना है जब हम इतने बहुमत से आए और 80% सब्जेक्ट्स हमारे पास है, हम लेजिस्लेशन भी ला सकते हैं, तो फिर हमें इंडिपेंडेंटली काम करने की मौका मिलना चाहिए। वो अपने तरफ वो ठीक है, पर अगर आप लीगली देख ले, एक तो होता है लीगल, एक होता है कन्वेंशन। लीगल में मुझे लगता है कि वो इंटरप्रिटेशन इस वक्त ठीक नहीं है। स्ट्रिक्टली जो इंटरप्रिटेशन जो 23 साल से आ रहा है, इतने सालों से इसका तो एक एक लाइन देख के लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो अब नई बात कुछ करनी है तो या तो टेस्ट करने पड़ेगी कोर्ट्स में, या तो आप होम मिनिस्ट्री को बताने पड़ेगा कि हमें मंजूर नहीं है, आप इसको बदलवा दीजिए और डेलीगेशन दीजिए। पर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और रूल्स रहते हैं तब तक उनको अपनाने पड़ेंगे। तो ये गलती की बात तब आएगी जब ये समझ में आए, समझने की कोशिश कोई कर नहीं रहा है। और जहां तक LG साहब के, जो मैं कहूंगी कि नॉर्मली ये सब चीज एमिकेबली सेटल हो जाते हैं, आप बस बातचीत से ये इसका तो कुछ ना कुछ समाधान निकलता है और नॉर्मली चीफ सेक्रेटरी एक ब्रिज बन जाता है दोनों के बीच में अगर ऐसी कोई टकराव हो तो। नोट्स और ऐसे लेटर्स लिखना, ऐसी प्रक्रिया कभी नहीं थी।
कहा जा रहा है कि LG कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका कहना है अरविंद केजरीवाल का जो कि पिछली जो सरकारें थी वो केंद्र सरकार के आगे झुकती रही थी और हम नहीं झुकेंगे। पहले क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा हावी रहती थी?
नहीं, वो काफी इंडिपेंडेंस देते थे और दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए आप देखेंगे CNG आया और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, या भागीदारी के द्वारा सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस आए, इतने कुछ 80 फ्लाईओवर्स आए दिल्ली में, रोड्स डेवलप हो गए, स्कूल रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए, नए नए हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस आ गए। ये सब काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दखल देता तो नहीं होता। टकराव होता था किसी किसी बात पे, पर वो उलझने नहीं दिया जाता था। जहां तक झुकने की बात है, आपको अगर आपकी समझ है कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है ब्यूरोक्रेसी की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की या सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, तो इसको आपको या तो कोर्ट में इसको चैलेंज करने पड़ेगा या कायदे से होम मिनिस्ट्री में बात करके लिख के इसको चैलेंज करने पड़ेगा। और फिर भी मुझे लगता है कि सारे लोग इतने सालों से गलती नहीं करते आ रहे हैं।
ऐसी खबरें आ रही है जो ब्यूरोक्रेट हैं वो दिल्ली में काम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। कल एक ऑफिसर का दफ्तर का ताला बंद कर दिया गया, क्या लगता है आपको कि ऐसी स्थिति होगी?
अगर आप बेइज्जती करेंगे ऑफिसर्स की, वो भी सीनियर ऑफिसर्स, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। उनका काम है लीडरशिप दिखाना बाकी डिपार्टमेंट्स को, नए आइडियाज देना, पॉलिसी डिसीजंस मंत्रियों से करवाना, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के साधन ढूंढना, पैसे उसके लिए बजटिंग करना और उसको आगे चलाना। अब बात आती है कि अगर आपको लीडरशिप का मौका नहीं मिलता है, आपको चांस नहीं मिलता है कि आप बात माने खुलेआम कर सके, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और किस तरह की मान्यताएं पुराने समय में देखी गईं, ये बता रही थी पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली की शैलजा चंद्र।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
और अब कार्यक्रम में सीधे चल रहे हैं राजस्थान, जहां से खबरें हैं कि कल भीषण आंधी तूफान आया और उसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं नारायण बारेट को। नारायण जी, कल किस तरह से ये भारी अंधड़ तूफान आया?
मंगलवार की शाम को यकायक पूरा राज्य धूल भरे बाउंडर के आगोश में आ गया। देखते देखते बिजली के खंभे उखड़ने लगे, पेड़ उखड़ने लगे और पूरा राज्य उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक पर इसका प्रभाव और प्रहार रहा। और सरकारी तौर पर अभी कोई खास इसकी पुष्टि मौतों की नहीं हुई है, लेकिन हिसाब लगाया जा रहा है कि कम से कम एक दर्जन लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार ने 4-4 लाख रुपए मदद की घोषणा की है जो लोग इसमें कालकल्वित हुए हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये उत्तरी राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर के बीच में एक परिसंचरण बना चक्रवर्ती, उसकी वजह से ऐसी फिजा बनी है। और जयपुर जो राजधानी है वहाँ 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली है। 3 टंपर सब उखड़ गए, कच्ची बस्तियों पे इसकी ज्यादा मार पड़ी है। अभी इसका आकलन किया जा रहा है कि नुकसान कितना व्यापक था, क्योंकि कहते हैं कि 50 से ज्यादा लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे हैं। हालांकि गर्मी से जरूर इससे राहत मिली है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत राज्य को चुकानी पड़ी है। अब दिन निकलने के साथ ये अनुमान लगाया जाएगा कि वाकई कितनी मौतें हुई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे 1 दर्जन लोगों के मरने की खबरें सामने आ रही है।
नारायण, इस तरह के आंधी तूफान तो बहुत बार आते हैं, आपने इस तरह का कोई तूफान पहले देखा है?
मैंने बचपन के बाद पहली मर्तबा इतना भीषण और भारी तूफान देखा जिसमें धूल भरी आंधियां चली, बाउंडर और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा कि जैसे कोई विपत्ति आने वाली है। पूरा आकाश जर्द और पीले रंग का हो गया, दिखना बंद हो गया और पूरे माहौल में धूल धूल हो गई। हालांकि उसके बाद थोड़ी छींटे भी पड़े, लेकिन नुकसान बहुत व्यापक हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया नारायण बारेट। तो राजस्थान में भीषण आंधी तूफान के चलते, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, लगभग दर्जन भर लोगों के मारे जाने की खबर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया का दौरा करने के बाद स्वदेश वापस आ गए। इन 3 देशों की यात्रा और पूरे साल में जो विदेश दौरे प्रधानमंत्री ने किए, उनके क्या मायने हैं, भारत को क्या हासिल हुआ, यही जानने के लिए बात की निखिल रंजन ने विदेश मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन से।
एक दिशा जो सारे एशियाई खित्ते में मनमोहन सिंह और इससे पहले वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव ने तय किया, उस दिशा में मोदी साहब ने हिंदुस्तान की विदेश नीति को आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि और गहराई आई है। चाइना में, कोरिया में जिन आर्थिक मुद्दों पे बातें हुई, जो अश्योरेंसेस मिले कोरियन और चाइनीज कंपनी से, मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों से देखा जाए तो ये यात्रा मोदी साहब का बेहद एक सफल और अच्छा जो है टूर रहा है।
सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप?
कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक जो मसले हैं जो भारत चीन आयात निर्यात में बाधा डाल रहे, उन चीजों को दूर करने के लिए एक हाई लेवल पॉलिटिकल ग्रुप, उसका गठन, वो एक अच्छा अनाउंसमेंट था। उसके अलावा कोरियाई कंपनियों का ये कहना कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा हिंदुस्तान में, और एक जो एक सियासी समझ जो हिंदुस्तान और चीन के नेताओं के बीच में होना जरूरी था, और जो 5-6 महीनों की वजह से जो इंकर्जन हुए और जो एशिया में जो एक तरह से चाइनीज प्लान को लेके थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी है, ऐसे माहौल में मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब का इकट्ठा मिलके इन तमाम चीजों पे बात करना अपने में, मैं समझता हूँ कि एक सकारात्मक सिग्नल सारे एशिया को भेज देता है।
पूरे साल के जो ये दौरे रहे हैं उसको लेकर के अगर देखा जाए तो भारत को क्या कुछ हासिल हुआ है?
सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो आलोचना सुनने में आता है जो भाई विदेश यात्रा में क्यों इतना घूम रहे हैं, भाई विदेश नीति जो है अब हिंदुस्तान के अंदरूनी या आर्थिक नीतियों से इसका एक इतना करीबी रिश्ता है कि ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि डोमेस्टिक पॉलिसी कहाँ खत्म होता है और आपकी विदेश नीति कहाँ शुरू होती है। तो ये एक लाजमी है कि मोदी साहब तवज्जो देंगे, और मैं समझता हूँ कि जो उनका एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहा है, ऐसे ऐसे छोटे देशों में जा चुके हैं जहाँ पे शायद 40-50 साल से हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, तो ये अपने में एक बहुत अच्छा संदेश दुनिया भर में चला जाता है। दुनिया भर में जो हिंदुस्तान क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अपने वजन के मुताबिक एक किरदार निभाने के लिए तैयार है कि नहीं, तो मोदी साहब की ये विदेश नीति और इनकी यात्राओं की वजह से ये संदेश जरूर जा चुका है। रही बात कॉन्क्रीट अचीवमेंट्स की, भाई ये सब देखने को वायदे बहुत सारे जापान में और अमेरिका में कोरिया में सुनने को मिले, कितना जो है ये इस पे कंपनीज अमल कर पाते हैं, कितना हम लोग उसको अब्सॉर्ब कर पाते हैं, ये मोदी साहब का एक सही तरह से परीक्षा है।
कहा यह भी जा रहा है कि विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी इन बहुत सारे दौरों को कर सकते थे और इसके लिए प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं थी।
इस बात को भी मैं बेबुनियाद मानता हूं, क्योंकि विदेश मंत्री और जो वाणिज्य मंत्री हैं अपनी जगह में उनके अपने स्तर पे मीटिंग होते हैं। मतलब अगर आप सुषमा स्वराज के एक्टिविटीज पे अगर आप रोशनी डालेंगे तो मालूम पड़ता है कि घूम रही हैं, और जो उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। जैसे हाल में जब मोदी साहब विदेश में थे तो ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए, जो एक बहुत ही करीबी देश है हिंदुस्तान के लिए। तो ये आलोचना मुझे लगता है कि इसमें कोई वजन नहीं है। प्रधानमंत्री एक अपना रोल है फॉरेन पॉलिसी में। ये बात अलग है कि मनमोहन सिंह साहब ज्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमिक चीजों पे जुटे रहते थे, उनका इतना शायद रुचि नहीं था, शायद इतना स्टैमिना नहीं था, इसलिए वो इतने लंबे दौरे पे नहीं जाते थे।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया का दौरा संपन्न कर चुके हैं, भारत वापस आ गए हैं। इसका पूरे प्रकरण का विश्लेषण कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन। और कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। प्रगति अखबार पढ़ चुकी हैं आप, क्या जो शीर्ष खबरें हैं वो नजीब जंग और केजरीवाल की हैं?
बिल्कुल, सारे अखबारों में लगभग जो पहली खबर है वो यही है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों राष्ट्रपति से मिले हैं, और कुछ अखबारों में इस तरह के संकेत भी हैं कि थोड़ी इनमें समझौता होने की सुगबुगाहट है। दूसरी जो खबर है वो ये है कि घर में रखे सोने पर आप ब्याज पा सकते हैं, ये भी सारे अखबारों ने ली है। मैं पहले आपको वो खबरें पढ़ देती हूँ जो सारे अखबारों ने पहले पन्ने पे ली।
मैं तो टंग गया हूँ, मैं जानती हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई घर में जो सोना रखा है उस पे मेरी कि उसको निकाला जाए और ब्याज लिया जाए।
हाँ बिल्कुल, केंद्र ने ये स्वर्ण बचत योजना का खाका पेश किया है जो कि अब आगे इस पे कार्रवाई होगी। 1 जून से आप बचत की बात कर रहे हैं, यहाँ महंगाई की बात शुरू होगी। 1 जून से सेवा कर लागू हो जाएगा जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। और राजधानी में तेज आंधी आई, 80 किलोमीटर रफ्तार से हवा चली जिससे कि मेट्रो सेवा बाधित हुई। NCR में 2 लोगों के मरने की खबर है और जनसत्ता ने ये कवर किया है। जनसत्ता में खबर है कि राजस्थान में 9 मौतें हो गई हैं।
और हमारे अभी जो संवाददाता हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो बता रहे हैं कि 12 लोग लगभग
बहुत बड़ी आंधी हो गई। मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर की भी खबर है कि मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर जो ओल्ड राजेंद्र नगर के सागर रत्न रेस्टोरेंट में हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। हिंदुस्तान में खबर है जो और कहीं नहीं है, सेना की सैकड़ों एकड़ भूमि लौटाने, सेना को निर्देश दिया है कि सैकड़ों एकड़ भूमि वो एयरफोर्स को लौटा दे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है इसका और निर्देश दिए हैं। जनसत्ता में है हाशिमपुरा कांड फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी उत्तर प्रदेश सरकार। और दुनिया से अलविदा अरुणा शानबाग रहेंगी यादों में, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है और अस्पताल में उनके कमरे को उनकी यादों के तौर पर सहेजा जाएगा। जी, नई दुनिया में खबर है कि 4 दिन पहले मानसून आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा था पहले कि मानसून कम आएगा, लेकिन अब मुझे लगता है मानसून जो है शुभ संदेश लेके आ रहा है हम लोग के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर को भारी पड़ सकती है रूसी महिलाओं की तारीफ। ये रूसी महिलाओं की उन्होंने काफी तारीफ की थी कि वो बहुत स्वस्थ होती हैं और उन्होंने किस तरह उनको माथे पर चुम्बन देकर उनका स्वागत किया, तो उस पे जो है काफी विवाद होने वाला है। पंजाब में भी बिखरा आपका कुनबा, आप पार्टी में जो दरार आ रही है, पंजाब में जहां आपको काफी मजबूत माना जा रहा था, अब उसमें भी दरार आ रही है।
और आपकी ओर से जो प्रभारी थे वो पंजाब के योगेंद्र यादव ही हुआ करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सोशल मीडिया पर इन दिनों उस लड़की की बहुत चर्चा है जिसने अश्लील संदेश के जवाब में कड़ा संदेश लिखा और साथ ही इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। देश भर में लोग इनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। गूगल हैंगआउट बीबीसी के इसमें शामिल होने की ये लड़कियां बीबीसी के दफ्तर आईं और इस दौरान हमारे सहयोगी सुशील झा ने उनसे बात की।
प्रेरणा, पता चला है कि फेसबुक ने वो पोस्ट हटा दी है, तो हुआ क्या है?
कल मेरे पास फेसबुक से मैसेज आया कि आपका जो वो पोस्ट था उसको न्यूडिटी कंटेंट की वजह से हटा दिया गया है और आप वो पोस्ट नहीं देख पाएंगे।
और जो पुलिस का जो मामला था, जो केस क्या था, क्या वो केस आपने फाइल कर दिया है?
जी बिल्कुल कर दिया है, मैंने वो केस फाइल कर दिया है।
मेरा आप बताइए, आपका क्या अनुभव है, क्या आपको भी मैसेज आते थे?
हाँ बिल्कुल, और इस तरह के मैसेज करने वाले सिर्फ युवा ही नहीं है, युवा वर्ग से ऊपर पिता की उम्र के लोग जो हैं, अधेड़ उम्र के लोगों ने भी इस तरह के मैसेज किए हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा ऑफर किया कि चलो ठीक है, वेबसाइट पे लिखने के लिए है, बाद में मालूम होता है कि antarvasna.com पे लिखने का ऑफर है।
ये बड़े लोग कर रहे हैं?
बड़े लोग कर रहे हैं इस तरह की हरकतें। और बाकी जो है हमारी उम्र के जो लड़के हैं वो हर रोज इस तरह के मैसेज आते हैं, बहुत लोगों को मैं इग्नोर करती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी मैसेज आते हैं तो जब बहुत बुरा लगता है कि बल्गर मैसेज है, तो फिर मैं उनका कहती हूँ, पहले उनको इनबॉक्स में कहती हूँ कि इस तरह के मैसेज ना करें, अगर इस तरह की बातें तो फिर मैं अगला कदम उठाऊंगी।
प्रेरणा एक बात बताइए कि जब इस तरह के मैसेज आते हैं तो जो मानसिक एक द्वंद होता है कि आप इस तरह की बातों को अगर ऑनलाइन डालेंगी तो आपकी भी एक छवि खराब होगी, तो एक लड़ाई होती है अपने आप से, तो उसको कैसे आपने पार किया? क्योंकि कई लड़कियां तो डर से, इस डर से कि घर वाले नाराज होंगे, इन बातों को सामने नहीं भी रखते हैं।
किसी भी व्यक्ति की छवि इस चीज से नहीं बनती कि दूसरे व्यक्ति उसे क्या लिखकर भेजते हैं या उसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि आप उस चीज को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, तो अगर कोई मेरे आत्मसम्मान पर, मेरी जो इज्जत है उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, अगर इस तरह की बातें करता है, तो मुझे पूरा हक है उसे जवाब देने का। और जहां तक छवि की बात है, ऑनलाइन की बात है, मुझे पता था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो लोग इस चीज को समझते हैं वो लोग जरूर साथ देंगे।
मेरा आपने भी शेयर किया कि जो आपसे किसी ने बदतमीजी की थी वो भी आपने शेयर किया अपने टाइमलाइन पे, जब आपने शेयर किया तो उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया थी आपके टाइमलाइन पे?
बहुत सारे लोग तो मेरे सपोर्ट में आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि मुझे मेघा पे शक है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ, आपको ऐसे मैसेज आए, तो आपने उन्हें ब्लॉक क्यों नहीं किया? मैं उन्हें ब्लॉक क्यों करूं? मैं क्योंकि वो पहले से मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो मैं डर के ब्लॉक क्यों कर दूं उन्हें? मैं उनसे डरती नहीं हूं। और रही बात जैसा आपने कहा छवि की, तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, अगर मैं छवि का ख्याल करती हूं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं अपने साथ ईमानदार नहीं रह पाऊंगी। आज अगर नहीं रुकी तो फिर आगे भी नहीं रोक पाऊंगे, और ये हर लड़की का मामला है।
जैसे अभी हम लोगों ने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाया कि आपकी जो स्टोरी थी प्रेरणा की, तो उस पे भी ज्यादातर पुरुष ही हैं, और उसमें से भी कई लोगों ने ये कहा कि ये तो फर्जी किसी प्रोफाइल ने किया होगा, या इन लड़कियों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। क्या इस मेंटालिटी के लोग इस घटना के आने के बाद भी आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं?
इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि लोग सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं जो ये बात सामने लेकर आया है। अगर मैं चुप रहूं, नकार दूं, जो कि मैं पिछले 2-3 सालों से कर रही हूं, इसे एक किसी व्यक्ति के तौर पर रखकर ना देखा जाए, बल्कि उस मुद्दे के तौर पर देखा जाए जो कि जरूरी है इस समय के लिए।
मानसिकता की समस्या,
एक मानसिकता की समस्या है। और जो ये कह रहे हैं कि वो आईडी फर्जी थी, मैं नहीं मानती कि वो आईडी फर्जी थी, क्योंकि उस आईडी से जुड़े हुए कई डिटेल्स दूसरे लोगों ने दूसरी वेबसाइट से निकाली हैं जो कि ऑथेंटिक हैं।
अब आपने कदम उठा लिया जी, तो आपकी तरह मान लीजिए कि मेधा है या कोई और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो
ये जो डर है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे निकालना चाहते हैं। अगर आपको भरोसा है कि ये इंसान, इस इंसान की प्रोफाइल असली है, ये इसके ऊपर केस किया जा सकता है, बाय ऑल मींस आप आगे जाइए, आप उनको जवाब दीजिए, क्योंकि जब तक पलटकर जवाब नहीं दिया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं इस मामले में लिंग भेद को बिल्कुल भी बीच में लाने की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी हो रहा है लड़का लड़की बराबर है। अगर ऐसे केसेस किसी के भी खिलाफ होते हैं, उनको उनको अपनी आवाज उठाने का पूरा पूरा हक है और उनको ऐसा करना चाहिए। डरिए मत, अगर आप सही हैं तो आपका साथ दिया जाएगा।
आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये दूसरी तरफ से भी हो सकता है।
बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और मैंने देखा भी है। मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं ऐसे जिनमें लड़कियों ने भी प्रस्ताव दिए हैं कि आप मुझे ईमेल आईडी दीजिए और मैं आपको अपनी फोटो भेजूंगी, आपकी प्रोफाइल मुझे बेहद पसंद है, मुझे पता है वो फेक प्रोफाइलें हैं, मुझे पता है कि वो पैसे लूटना चाहती, मैं उनको नहीं रिप्लाई करती।
प्रेरणा और मेघा से बात कर रहे थे सुशील झा, और ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणियां दी उन लोगों के लिए जो कि अश्लील टिप्पणियां किया करते थे। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल 8 में कल खेले गए पहले क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। चेन्नई के सामने जीत के लिए 188 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो 19 ओवर में ही 162 रनों पर ढेर हो गई। चेन्नई के लिए फेफ डू प्लेसिस ने 45, सुरेश रैना ने 25 और ड्वेन ब्रावो ने 20 रन बनाए। मुंबई के लिए हरभजन सिंह ने 26 रन देकर 2 और आर विनय कुमार ने भी 26 रन देकर 2 विकेट लिए। हरभजन सिंह ने सुरेश रैना और धोनी को लगातार 2 गेंदों पर चलता किया तो लसित मलिंगा ने भी 23 रन देकर 3 विकेट झटके। इससे पहले मुंबई ने लैंडल सिमंस के 65, किरण पलार्ड के 41 और पार्थिव पटेल के 35 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 187 रन बनाए। चेन्नई के ड्वेन ब्रावो ने 40 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। आज आईपीएल 8 में एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच में हारने वाली टीम को वापसी का कोई अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष होगा। बेंगलोर के पास कप्तान विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डी विलियर्स जैसे धुरंधर बल्लेबाज हैं, तो राजस्थान के पास कप्तान स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे और शेन वॉटसन जैसे कामयाब बल्लेबाज हैं। इस मुकाबले को लेकर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन कहते हैं,
मुझे लगता है कि देखिए इतना करीब आईपीएल शायद हमने देखा था, आखिरी मैच तक पता नहीं था कि कौन सी चार टीमें जाएंगी, तो बाकी टीमें जो रह गई उन्होंने खराब खेल नहीं दिखाया, पर कंपटीशन इतना कड़ा था कि अब लक फैक्टर बहुत रहा और बैंगलोर टीम अब पहुंच ही चुकी है बारिश के कारण, पर टीम तो डेंजरस है। क्रिस गेल, एबी डी विलियर्स, विराट कोहली, मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज हों, पाप की टीम तो डेंजरस है ही। राजस्थान रॉयल्स मुझे लगता है कि क्योंकि मैच पुणे में है, शायद अपना जिस तरह का खेल है जो दिखाते रहे जयपुर में वैसा खेल ना दिखा पाए, थोड़ी सा बदलाव आएगा। दो जो स्टार खिलाड़ी रहे हैं वो राजस्थान रॉयल्स के शेन वॉटसन रहे, शुरुआत के मैचेस जो जीते हैं उसमें रहाणे के साथ साथ स्मिथ ने अपना रोल निभाया, संजू सैमसन ने काफी डिसअपॉइंट किया है, स्टुअर्ट बिनी की भी ज्यादा मैं सोचता था कंट्रीब्यूशन रहेगी वो भी नहीं हो पाई, फॉक्नर हमेशा डेंजरस रहेंगे हालांकि उनको वर्ल्ड कप में ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, पर ऐसे खिलाड़ी हैं कि कभी किसी दिन बल्ले से या गेंद से मैच जिता सकते हैं, पर बैंगलोर टीम को मैं फेवरेट मानता हूं।
उधर आईपीएल 8 के महासंग्राम के बीच आज भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट चयनकर्ता मुंबई में बांग्लादेश दौरे के लिए टीम का चयन करेंगे। टेस्ट मैच के लिए टीम की कमान विराट कोहली को सौंपा जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश में 10 से 14 जून तक एकमात्र टेस्ट मैच और उसके बाद 18 जून से 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगी। अब देखना है कि अधिकतर जाने पहचाने पुराने चेहरों के बीच कौन से नए खिलाड़ी टीम में जगह बनाते हैं।
तो ये तो बात थी खेलों की, और अब उनकी बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
सीबीएसई बोर्ड के 12वीं कक्षा के रिजल्ट आज घोषित किए जाने की उम्मीद है। अगर आज रिजल्ट घोषित किया जाता है तो सुबह 9 बजे तक सभी क्षेत्रों और सभी विषयों के रिजल्ट सीबीएसई की साइट पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी आज मुंबई में बांग्लादेश टूर के लिए भारतीय टीम का चयन करेगी। 10 जून से भारत और बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच खेले जाने हैं। इस हफ्ते माइजू M1 नोट भारत में लॉन्च किया जाएगा। आज से भारत में इसके हैंडसेट की बिक्री अमेजॉन के जरिए शुरू की जाएगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज विदेश नीति के मुद्दों पर रूस के उच्चतर सदन को संबोधित करेंगे। यूक्रेन संकट पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर उनके वक्तव्य को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली में कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद ने नौकरशाहों की नियुक्तियों पर नई बहस छेड़ दी है। इसी विवाद के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। अल्जीरिया का कहना है कि राजधानी अल्जीयर्स के पूर्व में एक प्रमुख कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कम से कम 22 इस्लामिक चरमपंथियों को मार गिराया है। कोलंबिया के उत्तर पश्चिमी शहर सेलगार में हुए विशाल भूस्खलन में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नोरकाई को ब्रिटेन के साल 2015 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। इराक के रमादी शहर में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से हजारों इराकी नागरिक रमादी शहर से भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 25,000 लोग वहां से भाग चुके हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाला था राजेश चौहान ने। एक घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।